ओम शांति। 16 मई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे 6 बजे शाम को 4 बजे 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट और यूट्यूब लाइव का लिंक दिया हुआ है, जो चारों समय रोजाना एक ही रहते हैं। आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से रहना चाहिए, तुम्हारा लव एक बाप से रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम्हें क्या मिलता है? बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा, जिसको वर्षा मिलता होगा वही कहेगा प्यार से मेरा बाबा, जिसको वर्षा ही नहीं मिल रहा वो प्यार से कह भी नहीं सकता मेरा। प्रश्न, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जाती, क्यों? किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है, क्यों? क्यों नहीं की जा सकती? जैसे बाबा कहते हैं वैसे कोई देहधारी मनुष्य कहने की सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य, जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बनाते, गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए। जितनी मनुष्यों की बातें हमने सुनी उनसे हम गिरते ही आए। कोई भी मनुष्य की बातें हमें करती कला नहीं करती। सतयुग से लेकर जब से हमने परमात्मा को छोड़ा तब से हम मन मत और मनुष्य मत पर चलते आए और साथ साथ गिरते हैं, साथ साथ गिरते हैं। एक परम पिता परम आत्मा है जो हर कल्प आकर हमारी चरती कला करते, और कोई हमारी चरती कला कर नहीं है। कोई भी मनुष्य, कोई भी संत, कोई भी गुरु, कोई भी देहधारी चढ़ती कला कर नहीं है। अब परमात्मा तो आता नहीं है, अब हम सुना रहे हैं ज्ञान तो, आप परमात्मा थोड़ा ज्ञान सुना रहे, परमात्मा सुना रहे, कहाँ है परमात्मा? सारी दीदियां सुना रही हैं, बहनें सुना रही हैं, भाई सुना रहे हैं, आप जाके सुनाएंगे सबको, फिर परमात्मा कहाँ सुनाता है? दीदी का नहीं है, मैं तो सुना रहा हूँ, मेरा ज्ञान है ये, मेरा भी नहीं है। आप तो मेरा बिल्कुल वैल्यू सारी खत्म करके रख दी। ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक शिव का, मेरे को पढ़ाने वाला भी बाप, कर लो भाई जैसे आप कहो मान लूंगा मैं। मैं तो अपने अपने आप में बहुत कुछ फन्ने खा समझ रहा था, मेरी सारी फन्ने खा निकाल के रख दिया, कोई बात नहीं ऐसी समझ लेंगे। ठीक है, तो मेरी वैल्यू करते तो आपकी वैल्यू बनती, आप आगे सुनाते आपको भी तड़ी रहती। अब आपने मेरी तड़ी खत्म करके अपनी भी तड़ी खत्म कर दी, तो मर्जी आपकी। मतलब जो भी बाबा सुना रहा, बाबा ना आता तो दुनिया के किसी भी ब्रह्मा बाबा की भी कोई वैल्यू नहीं। ब्रह्मा बाबा को भी तो पता नहीं था, ब्रह्मा बाबा की भी उसी के शरीर से बोल रहे हैं। सबसे पहला नंबर वन कृष्ण यही बनता, नारायण यही बनता, और ये भी गिरता हुआ। हम सब चाहे कोई भी है, कोई भी देहधारी मनुष्य उसने टॉप पर जाकर नीचे गिरना ही है, और हर एक आत्मा को बॉटम से टॉप पर पहुंचाना सिर्फ एक शिव बाबा का ही कार्य, और कोई है ही नहीं। वो सारी महिमा भी बाबा कहते एक मेरी है और किसी की महिमा हो नहीं। मक्खन बहुत लगाता है अपने आप को, भी मक्खन लगाता है, ताकत आ जाती होगी से बाबा के पास। चलो ठीक है, जी बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे आप। ओम गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं। कितना देखो बाबा हमें एक एक गीत की मतलब एक एक बात हमें समझाना चाहिए। गीत की पहली लाइन जो हमने सुनी है उसका अर्थ क्या है, कौन बताए? हाँ जी, हाँ अच्छी जगह पर प्रयोग करें तो ठीक है, और यदि इसको हम प्रयोग करें गलत जगह पर तो गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। जैसे गीता में भगवानोवाच मन मना भव मध्याजी भव माम एकम याद करो, यदि ये तीनों के तीनों शिव बाबा के साथ जुड़े हैं तो ये तीनों राइट हैं, और यदि शिव बाबा के साथ नहीं जुड़े हैं तो ये तीनों भी रॉन्ग हो जाएंगे। मन मना भाव करना है, आप किसी चोर डाकू गलत व्यक्ति के डायरेक्शन पर मन मना भाव कर रहे हो तो क्या हो गया? गलत। मध्याजी भाव, किसका मध्याजी भाव? विष्णु चतुर्भुज का पता ही नहीं है क्या है तो क्या विष्णु चतुर्भुज को याद करें? मध्याजी भाव जब से गीता लिखी गई आज से 2000 साल पहले से मध्याजी भाव मध्याजी भाव सारी दुनिया करती आई है, वो तो मध्याजी भाव विष्णु चतुर्भुज रूप को भी याद करो। उसके अंदर गीता में भी यही लिखा है, हे अर्जुन मेरे विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद कर। परंतु उसको भी याद क्या करे, कैसे करे वो भी रोंग हो जाए। मां मेकम याद कर कि कौन मां मेकम, यदि गीता को देखे तो कृष्ण के लिए कहा है कि मां मेकम याद कर। अब मुझे तो कृष्ण को याद करने से आज तक किसी का कल्याण हुआ, क्योंकि ये यदि तीनों के तीनों शिव बाबा के साथ हैं तब ये तीनों राइट है, और यदि शिव बाबा के साथ नहीं है तो ये तीनों भी क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते। जब ये शिव बाबा के साथ है तब ये अच्छा ठीक है। इसको कहा जाता है आटे में नमक। जैसे गीत की एक लाइन ठीक है बाकी सारा गीत खराब है, ऐसे ही गीता में भी भगवान का नाम हटा देने से, बदल देने से आटे में नमक सच रह गया। अब भगवान किसको कहा जाता है, ये तो बच्चे अच्छी रीति जान गए, अब जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता है, शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं, आते कहाँ हैं? शिवालय रचने के लिए कहाँ आते हैं? और कौन बताएगा? हाँ जी, वैशाल्य में आते, खुद आकर पतित दुनिया में, पतित तन में आकर पतितों को पावन बना। ए नीचे नीचे लागले सिक्की लदे रुआनी बच्चे, सुनती हो? सुनती तो आत्मा है ना, जानते हो हम आत्मा अविनाशी है, ये देह विनाशी है। हम आत्मा अब अपने परमपिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परमपिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं उनके कोई महावाक्य नहीं। कोई भी दुनिया में कितने धर्म पिताएं, कितने धर्म आचार्य, कितने धर्म गुरु आए हैं, अलग अलग नाम से, पैगंबर कहो, संत कहो, महात्मा कहो, मतलब जो भी वो अपने जो भी नाम रखते आए, अपने आप को कितना श्रेष्ठ भगवान उनको समझते हैं। फिर सभी को भगवान, जितने भी कितने देहधारी है सबको भगवान बना दिया, सब में परमात्मा कर दिया कि तेरे में भी परमात्मा है, मेरे में भी परमात्मा है, हम सब परमात्मा। उनके कोई महावाक्य नहीं है। ये बात क्या आपको हजम हो रही है कि उनके महावाक्य नहीं है? एक एक व्यक्ति की कोटेशन को महत्व दिया जाता है। ये मोदी ने कहा है, ये अपना आइंस्टाइन ने कहा है, ये गुरु नानक ने कहा है, कबीर ने कहा है। अब उनके महावाक्यों को लेकर के दुनिया इतना महत्व देती है, फलाने रविदास ने कहा है, संत ने कहा है, फलाने त्रिवुलरम ने कहा है, दूसरे ने कहा, कितने संतों के नाम, कितने अच्छी अच्छी बातें इकट्ठी करके रखी हैं, वो अच्छी नहीं है? हाँ जी,
वो तो सब देह के लिए बताया गया है, आत्मा के लिए तो उन्नति किसी ने बताया
है? आत्मा की उन्नति के लिए तो किसने बताया नहीं, बताया भाई भी तो उसका असर नहीं। क्यों असर नहीं? वो हजम नहीं होती था। ना बताने वाला परमात्मा है, ना सुनने वाले आत्मा, क्योंकि देहधारी कुछ भी बताएगा उसके बोलने में वो ताकत नहीं आ सकती, क्योंकि वो उसके पास नहीं, वो बात बता रहा है परंतु उसमें नहीं है। आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें जो बताई भी गई है, परंतु बताने वाला खुद को आत्मा नहीं समझता, इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अब जो बातें बताई जाए और वो आते बातें अपने जीवन में अप्लाई ना हो सके तो मुश्किल हो जाए। इसलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना प्रत्यक्ष मॉनिटर बनाया, मॉडल बनाया कि देखो मैंने कहा और इसने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाया है, इसलिए इसके जीवन कहानी को अच्छी तरह समझ। जितना अच्छी तरह आप ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को समझेंगे तो आपको प्रैक्टिकल होना सहज हो जाएगा। ये मॉडल, इसके कदमों पर चलना, और किसी के भी कदमों पर चलने के लिए नहीं कहा। भाई बहनों के कदमों पर नहीं चलो। भाई कैसे करता है, बहन कैसे करती है, हमारे से बड़े है, हमारे से सीनियर है, परंतु उनके कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, परंतु बाबा की ही श्रीमत के अनुसार उसे चेक करना, अपनी मत मन मत नहीं चलाना, किसी गुरु की मत नहीं चलाना। उनके कोई महावाक्य नहीं है, शिव हम जो कहते हैं वे भी सही वाक्य है नहीं, बाद में नहीं लगा दिया, जो शिव हम जो कहते हैं वे भी सही वाक्य है नहीं। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुल गुल बनाते, कांटे और फूल में कितना फर्क होता है। अब दुनिया वालों ने अपने आप को भगवान कह दिया, दशरथ पटेल ने भी अपने आप को भगवान कह दिया, पता ही नहीं मतलब कितना दुनिया पागलों की तरह चल पड़ती है, सब अपने आप को भगवान कह रहे हैं। ये तुम्हारा ब्रह्मा कुमारियों वाला शिव तो एक पृथ्वी का शिव है, मैं तो सारी पृथ्वियों के, कितनी सारी दुनिया में सौर मंडल है, कितनी सारी पृथ्वियां है, उनके सबके शिव अलग अलग है, मैं उन सब का भी मैं शिव, क्योंकि ये राज मैं खो सकता, ये राज यू नहीं खो सकता। हाँ जी, मैं आवाज को समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल की आवाज बहुत कम है, एक आपकी आवाज भी इतनी ज्यादा है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते, इस पर शिव बाबा विराजमान है, वे भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता है परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती हैं, हे परम आत्मा आओ, आकर हमको पावन बनाओ, वो है ही परम पिता, परम बनाने वाला। बाप आकर समझाते हैं, कौन आकर समझाते हैं, बाप आकर समझाते हैं। तुम पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम बनते हो, वे हैं देवताएं। परम आत्मा परम पिता अक्षर बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते हैं तो मीठापन में मीठापन आता। परम पिता परमात्मा बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है, सब उस पर कुर्बान जाए, परंतु बात यह है कि उसको सर्वव्यापी करके उसका सारा मिठास खत्म कर, अब वो दिखाई नहीं दे सकता, मिल नहीं सकता, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसका एंजॉय भी नहीं कर। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं, तुम्हारे में भी जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बनकर बैठे हुए हैं, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते। वे स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं, ये है आत्माओं को परमात्मा को याद करना बहुत प्यार से, भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते, वे लव नहीं रहता, जानते ही नहीं तो लव कैसे हो। अभी तुम बच्चों का बहुत लव, आत्मा कैसी है, मेरा बाबा, आत्माएं भाई भाई है ना, हर एक भाई कैसे है, बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, परंतु वे लव नहीं कहा जाता, परंतु वे लव नहीं कहा जाता, जिसे कुछ मिलता है उसमें लव रहता है। बाप में बच्चों का लव रहता है क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है, जितना जास्ती वर्षा उतने बच्चों का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो फिर बाप में इतना लव नहीं रहेगा। फिर दादे से लव हो जाएगा, समझेंगे इससे पैसा मिलेगा। अभी तो है बेहद काबा, तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते, हमको बाप पढ़ाते हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान हमारा बाप है, जिस रस्ता बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, ना जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते हैं। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, आखिर कह देते हैं हम अभी तुम बच्चे, हम देते हैं हम, आखिर बच्चे से पूछते जाओ ना बेचारा पापा कौन है, बताता जाएगा। अच्छा तेरे पापा का पापा कौन है, दादा का पापा कौन है, परदादा का पापा कौन है, आखिर थक कर कहेगा सबका बाप मैं, गुस्सा जाएगा उसको ना, कहाँ से ढूंढ के लाए, उसे पता ही नहीं है। तो कहेगा आखिर कह देते हैं हम, अभी तुम बच्चे जानते हो उन सब बापों का बाप है जरूर। अब दशरथ पटेल से यही प्रश्न पूछा गया कि भाई अच्छा इतने सारे शिव हैं अलग अलग धरती के, तो उनका फिर बाप कौन है। मुसीबत तो उसके सामने ये आई, यही बात जो अब यहाँ पर बाबा कह रहे हैं, आखिर दशरथ पटेल को खोलने पड़ा, कहना पड़ा कि ये राज मैंने खोला है, कोई दूसरा खोल नहीं सकता, तो मैं हुआ ना सारे सारे उसका राज तो बाप, सारे शिव का, शिव जितने भी है सारे पृथ्वी के शिव है, वो सारे शिवों का बाप मैं। उनका कोई बाप है, कहेंगे नहीं। ये है ऊंच से ऊंच बाप। दशरथ पटेल का बाप तो जिसने पैदा किया वो यहाँ बैठा है ना, मर गया वैसे, परंतु था ना जिसने उसको पैदा किया, स्वर्णों को उसके साथ लिखा हुआ है। ये है ऊंच से ऊंच बाप। तो बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए ना। उन यात्राओं में पर जाते हैं तो वे इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है ही नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं, मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं। एक तो ये टिप्पण घिस जाती किसी, और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती, एक तो माथे की टिप्पण घिसती है, दूसरा पैसों पैसे की टिप्पण घिसती, पैसे बहुत सारे खर्च हो जाते हैं ना, कहीं भी जाएंगे मत्था टेकेंगे साथ में पैसे भी देंगे ना, जो पैसों का ढेर हमारे पास था, खजाना हमारे पास था, वो भी तो कम हुआ, पैसे बहुत खर्च करते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत शोकार हो जाते। ये मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे, तुमको कितने पैसे दिए थे, 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था एक बाप ही ऐसे कहते हैं, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था, अभी तुम क्या बन गए। बुद्धि में आना चाहिए ना, हम कितना ऊंच थे, पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट आकर पड़े, कोई मिसल बन पड़े, फिर अभी हम बाबा के पास जाते जो हमको विश्व का मालिक बनाते। ये एक ही यात्रा है जबकि आत्माओं को बाप मिलते तो अंदर में वे लव रहना चाहिए। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम उस बाप के पास जाते हैं जिनसे हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वे बाप हमको शिक्षा देते हैं, बच्चे देवी गुण धारण करो, सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद, मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि माँ में तुम याद करो, तो कुछ होगा, तो कुछ होगा। तो विकर्म विनाश तो क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे। दिल में ये आना चाहिए हम बेहद के पास, बेहद के बाप के पास आए, बेहद के बाप के पास आए। बाप कहते हैं मैं गुप्त हूँ। आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड है उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद खुशी होनी चाहिए, बेहद खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गद गद होना चाहिए। बाप कहते हैं पढ़ाने के लिए आया है हमको, देवी गुण धारण करने की युक्ति बताते। घर से निकलते समय ही अंदर में ये खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है, चेहरा सुंदर हो जाता है ना, तो मुखड़ा ही खिल जाता है। ये मुखड़ा खिलता है दुख पाने के लिए। दुनिया वाले कितना श्रृंगार करके, कितना सुंदर बन के उस पति को प्राप्त करके क्या करते हैं, दुख पाते। दुख पाने के लिए बड़े खुश होते हैं, बड़ा श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया पता नहीं खर्च करते हैं श्रृंगार कराने, 20,000-50,000 और वो भी सारा केमिकल और जो चेहरे को और बिगाड़ दे, नुकसान को पता नहीं। अब बाबा अच्छा है, अच्छा कुछ नहीं, बस सिर्फ तुम मुंह धो करके बैठ जाओ, कोई मुंह को देखने की जरूरत नहीं है, हम तो आत्मा को देखते हैं, आत्मा तुम कितनी अच्छी है। ये काले से गोरा, हाँ मुंह को बस साफ करके बैठ जाओ, नहा धो करके आ जाओ, काफी ये लाल पीले नीले रंग भी लगाने की जरूरत। तुम्हारा मुखड़ा खिलता है, बिना रंग के तुम्हारी खुशी आ जाती है, वो लाली आ जाती है जो आ ही नहीं सकती किसी रंग से। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है, सतयुग में जाएंगे फिर डिग्री कम हो जाएगी, सतयुग में जाएंगे जाते ही डिग्री कम। यहाँ से जिस डिग्री पर शिव बाबा हमें पहुंचा देंगे, शिव बाबा की डायरेक्शन पर चलकर मेहनत करके पहुंचेंगे और सतयुग में गए तो डिग्री डाउन हो जाएगी, गिरना शुरू। अभी तो तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, वेद हमारा बाप भी है टीचर भी है, पढ़ाते हैं, फिर पावन बनाकर साथ में भी ले जाते जाएंगे। हम आत्मा अब इस सीसी रावण राज्य से छूटते हैं, अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। जबकि बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण बनेंगे, ये है ही सत्य नारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की कथा। वो झूठी कथाएं जन्म जन्मांतर सुनते आए, वो वास्तव में क्या है, कथा नहीं है, वो क्या है, वो वास्तव में सत्य नारायण की कथा नहीं है, कौन बताएगा वो क्या है? उस कथा का महात्म, सत्य नारायण कथा का महात्म, कथा नहीं है। मतलब किताब के ऊपर तो सही लिखा है, परंतु दुनिया वाले महात्म शब्द को पढ़ते ही नहीं। कहते सत्य नारायण की कथा रखवाइए आ जाओ, जबकि उसके अंदर गपोड़ा लिखा हुआ है, जिसने सत्यनारायण की कथा सुनी उसका राजपाट मिल गया, उसकी समस्याओं का समाधान हो गया और वो कथा कहाँ है जिसको सुनने से मौज हुई थी, वो दुनिया में कहीं भी अवेलेबल। अभी बाप से एक ही बार तुम सच्ची सच्ची कथा सुनते हो, वे फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, उसके फिर वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं, वो कब आया क्या किया ये कोई भी नहीं जानता। इससे पूछो कि आखिर शिव बाबा ने शिवरात्रि मना रहे हो, शिव जयंती मना रहे हो, कब आया था वो कोई नहीं जानता। कैसे कंसपुरी में आता है, अब वो पतित दुनिया में कैसे आएगा? कृष्ण कंसपुरी में आता है तो आकर कैसे आएगा, कैसे जन्म लेगा? बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम बेहद बाप के पास जाते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं, हमको फलाने द्वारा तीर लगा, फलाने भाई ने, फलाने बहन ने, प्राणी आत्मा ने मेरे को बाण मारा और मैं बाबा आपके पास आ गया। ये कैसे बाण है भाई? हाँ जी, ये है ज्ञान के बाण, ये है ज्ञान की तलवार। जिससे किसी को ज्ञान की तलवार मारो, ज्ञान के बाण मारो, ज्ञान के भाले मारो, ज्ञान के गोले मारो, ज्ञान के बम्ब मारो, मतलब सारा ज्ञान है, मतलब दुनिया को इस आखिरी दुनिया से मारो, तब उसे आप बाबा से मिला। हमारे बाण भी अजीब दिखे ना किसी को, ज्ञान के बाण, ज्ञान के गोले, ज्ञान के क्या बोलते हैं तलवार, मतलब जितने भी भाले त्रिशूल जो भी हथियार हो सकते हैं वो सारे हमारे पास ज्ञान के। और ये फिर किसने मारे थे, किसको मारे थे, ये भी वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह को कन्याओं ने बाण मारे। अब कौन से बाण मारे? ज्ञान के बाण, जिससे मतलब अर्जुन को मारे, अर्जुन ने मारा नहीं, कन्याओं ने मारा, क्योंकि अर्जुन उसको नहीं मार सकता, कन्याओं को दिखाया वो क्या था, वो जो आगे स्कंदी वो कन्या थी और वो हिजड़ा बन के वहां पर आई थी और वो उसने उस पर वो बाण चलाए और जिससे जो है ना वो स्कंदी के पीछे से अर्जुन ने चलाए। तो बाबा कहते ज्ञान चलाने बाण को चलाने वाले मेरे बाण है ना, चलाए चाहे कोई। हमको फलाने द्वारा तीर लगा, बाबा आए हैं बस, उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते। ये है तुम्हारी बड़े से बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य है, बच्चों के पास जाते भी हैं, वो है जड़ यात्रा है। यहाँ तो बाप चैतन्य है, जैसे हम आत्मा बोलती हैं वैसे वे परम आत्मा बाप भी बोलते हैं। शरीर द्वारा ये पढ़ाई है, मनुष्य भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए, वे है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, वह कौन सा धंधा करना चाहिए? बाप कहते हैं दोनों करो। सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ जंगल में नहीं जाना, ये तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, दोनों के लिए पढ़ाई है, सब तो पढ़ेंगे भी नहीं, कोई अच्छा पढ़ेंगे कोई काम, कोई वो एकदम झट तीर लग जाएगा, कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे, कोई कहते हैं हाँ अब समझने की कोशिश करेंगे, कोई कहेंगे ये तो एकांत में समझने की बातें हैं, बस फिर गुम हो जाते हैं क्योंकि उनको एकांत मिलता ही नहीं है। कोई को ज्ञान क्या तीर लग जाता है तो झट आकर समझेंगे, कोई फिर कहेंगे हमको फुर्सत नहीं, तो समझो तीर लगा नहीं, अभी उसको तीर लगा ही नहीं है, अभी आपके तीर में ताकत नहीं है, तीर लगा नहीं मतलब समझ लो कि अभी मेरे तीर में ताकत नहीं। और क्या हो सकता है दूसरा कारण, इस आत्मा का अभी समय नहीं है। दो बातें हो सकती, मेरा तीर ठीक जगह पर नहीं लगा। देखो बाबा को तीर लगा, सबसे पहले किसको तीर लगा, ब्रह्मा बाबा, तो फट से छोड़ दिया ना कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा बताओ ब्रह्मा बाबा को तीर मारा, ये ऐसा तीर है आप खुद को भी मार सकते, खुद को भी तीर मार सकते, पहले सारे तीर अपने ऊपर चला दें, सारे बाण अपने ऊपर चला दें, तो कैसे कैसे कैसा बाबा ये दिखाई भी नहीं देता और बाण भी कहता है अपने ऊपर खुद चला, समझा बादशाही मिलती है उनके आगे ये क्या है, हमको तो बाप से राजाई लेनी है, अभी बाप कहते हैं वो धंधा आदि भी करो सिर्फ एक हफ्ता ये अच्छी रीति समझो, गृह व्यवहार भी संभालना है, रचना की पालना भी करनी है, वे तो रच कर फिर भाग जाते हैं, बाप कहते हैं तुमने रचा है तो सिर्फ अच्छी रीति संभालो, समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानता है तो सपूत है, नहीं समझता समझते हैं तो कपूत है, सपूत और कपूत का पता पड़ जाता है ना, बाप कहते हैं तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा मिलना चाहिए, पवित्र बन सपूत बच्चा बन नाम बाला करो, तीर लग गया फिर तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे, बाप आए हैं शिव आलय में ले जाने तो शिव आलय में जाने लिए फिर लाइक बनो, बनना है मेहनत है, बोलो अब शिव बाबा को याद करो, मौत सामने खड़ा कल्याण तो उनका भी करना है ना, बोलो अब याद करो तो विकार में विनाश होंगे, तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर का उद्धार करना, जब भी तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना, रहम दिल बनना चाहिए, पतित तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता बताना है, तुम जानते हो हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है, नर्क में सब पतित आत्माएं हैं, तब तो गंगा में स्नान कर पावन होने जाते हैं, पहले तो समझें कि हम पतित सब हैं इसलिए पावन बनना है, बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, साधु संत आदि के भी जो भी सबको ये मेरा पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, इस युग अग्नि से अथवा याद की यात्रा से तुम्हारी खाद निकलती जाएगी, तुम पवित्र बन मेरे पास आ जाएंगे, मैं तुम सबको साथ ले जाऊंगा, जैसे बिच्छू होता है ना चलता जाता है चलता जाता है, जहां नर्म चीज होती है देखता है तो डंक मार, सख्त चीज पर नहीं मारेगा, पत्थर पर जाकर डंक नहीं मारेगा, तुम भी बाप का परिचय दो, ये बाप ने समझाया है मेरे भगत कहाँ रहते हैं, जो कमजोर नर्म आत्माएं हैं वो कहाँ रहती हैं, मंदिरों में रहती हैं, शिव के मंदिर में मिलेंगे, कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर मिलेंगे। भगत मेरी भक्ति करते रहते हैं, मैं तो बच्चे ना मेरे से राज्य लिया था, अब पूज्य से पुजारी बन गए हैं, देवताओं के भगत है ना, नंबर वन है शिव की अव्यभिचारी भक्ति। फिर गिरते गिरते अभी तो भूत पूजा करने लगे, शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होता, ये सब आत्माओं का बाप शिव बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हम तुमको पैगाम देते हैं। अब बाप कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर मैं, ज्ञान भी सुना रहा हूँ, पावन बनने के लिए योग भी सिखा रहा हूँ, ब्रह्मा तन से मैसेज दे रहा हूँ मुझे याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो, तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में, वहां तुम समझा सकते हो पतित पावन गंगा है या परमात्मा या परम आत्मा। तो बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए कि हम किसके पास जाते हैं, कितना साधारण क्या बढ़ाई दिखाए, शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते, बाप कहते हैं मैं तो साधारण स्थान लेता हूं, तुम ही राय दो, आज तो काम गड़बड़ हो गया, आज तो बाबा उल्टा हो गया, बाबा हम बच्चों से राय ले रहे हैं भाई, अलर्ट हो जाओ, सोच समझ के राय दे दो, पक्का वादा हाथ भी उठवा लेना बाबा से, आज मौका मिला है, साधारण काम लेता हूं तुम ही राय दो कि मैं क्या करूं, इस रथ को क्या श्रृंगारूं, बोलो ब्रह्मा बाबा के तन को श्रृंगार करे।
नहीं बाबा आप जैसे आए हो वैसे अच्छे हो।
ये विकार आपको किसने कहा था बोलने के लिए, ऐसा बोलना था ताकि बाबा हमारे वश में हो जाता, आज मौका मिला था राय मांग रहा था और आपने सारा खो दिया। वो हुसैन का घोड़ा निकालते हैं उनको कितना श्रृंगारते हैं, यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया, उन्होंने घोड़ा बनाया था, यहाँ दुनिया वाले ने क्या किया, शिव बाबा का रथ बैल बना दिया, बैल के मस्तक में गोल गोल खींची का चित्र बिंदी लगा देते, अब शिव बाबा बैल में कहां से आएगा, भला मंदिर में बैल क्यों रखा है। शंकर की सवारी कहते हैं, सूक्ष्म वतन में शंकर की सवारी होती है क्या, ये सब है भक्ति मार्ग जो ड्रामा में नूंज है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ नंबर एक, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को शिव आले में चलने के लायक बनाएंगे, सपूत बच्चा बनकर श्री मत पर चलकर बाप का नाम बाला करें, रहम दिल पर तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनना है, सबका कल्याण करना है, मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है, वरदान हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण था। अब आप बच्चे अब ऐसा दिव्य दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या, भविष्य में क्या बनना है, जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे वह देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास व अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की व स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है। तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। स्लोगन, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीज भंवर से सहज निकल जाएंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहां भी हद की आकर्षण में आंख ना देते। वारिस अर्थात अधिकारी को वारिस अर्थात अधिकारी तो जो यहाँ सदा अधिकारी तेज पर रहते हैं कभी भी माया के अधीन नहीं होते हैं। अधिकारी पन के शुभ नशे में रहते हैं। ऐसे अधिकारी तेज वाले ही वहां भी अधिकारी बनते। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर के विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओके।